प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यशायाह नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा है कि अश्शूर उत्तर दिशा से बाढ़ के समान सब राज्यों को जीतते हुए मिस्र की ओर बढ़ते जा रहे थे, परंतु यरूशलेम पर आकर उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि हिजकिया यरूशलेम का राजा तत्कालिक समर्पण के लिए तैयार नहीं था। हिजकिया ने संधि के लिए प्रतिनिधि अश्शूरों के सेनापति रबशाके के पास भेजे, परंतु उसने सीधी समर्पण की मांग की और परमेश्वर का ठड्ढा किया। यह समाचार सुनकर उसने यशाया को संदेश भेजा और स्वयं मंदिर में प्रार्थना करने को गया। अब परमेश्वर उत्तर देता है, इस बात को हम आज के अध्ययन में देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे प्रतिदिन बोलते और बातचीत करते हैं। आज हम फिर से आपके वचन में से सीखना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं, निश्चित रूप से आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, हमसे बोले और बातचीत करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो किसी न किसी रूप से दुखित हैं, परेशान हैं, चिंताओं में हैं या किसी प्रकार के तनाव और दबाव में हैं, नौकरी की वजह से, अपनी बीमारी की वजह से या अपना वैवाहिक जीवन की वजह से। आप उन सब की सहायता करें, उन्हें शांति दें, अपने वचन से उनसे बोले और बातचीत करें। इस घड़ी हम सबको आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे यशाया के द्वारा परमेश्वर का प्रोत्साहन। यशाया की पुस्तक 37 अध्याय उसके 5 और 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हिजकिया राजा के कर्मचारी यशाया के पास आए, तब यशाया ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। परमेश्वर हिजकिया को विश्वास दिलाता है कि अश्शूरों की इस निंदा उसने सुनी है। परमेश्वर न तो निंदा को अनसुना कर सकता है और न ही कभी करेगा। तब हम आगे पढ़ते हैं यशाया की पुस्तक 37 अध्याय के 7 पद में, सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। जी हाँ, वह यरूशलेम के निकट तो नहीं, अपने ही देश में मारा जाएगा। हम देखेंगे कि यह भविष्यवाणी एक एक शब्द पूरी हुई। परमेश्वर अश्शूरों के विनाश की घोषणा करता है। हिजकिया को धमकियां भरी पत्र मिला। जब रबशाके अपनी सेना के मध्य पहुंचा, तब उसे समाचार प्राप्त हुआ कि अश्शूरों के राजा ने लाकिश से प्रस्थान कर लिबनाह से युद्ध करने चल पड़ा है। उसे यह समाचार भी मिला कि अश्शूरों की सेना के मुख्य भाग पर मिस्रियों द्वारा आक्रमण किया गया है अतः उसने अपनी लाज रखने के लिए हिजकिया को पत्र लिखा कि वह लौटकर आएगा और यरूशलेम से हटकर अपनी मुख्य सेना की सहायता के लिए चल पड़ा। यह पत्र उसका एक और प्रयास था कि वह परमेश्वर में हिजकिया के विश्वास को हिला दे। यशाया की पुस्तक 37 अध्याय के 10 पद में लिखा है, तुम यहूदा के राजा हिजकिया से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूरों के राजा के वश में न पड़ेगा। वह रपशाके के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराता है। तब यशाया 37 के 11 और 12 पद में आगे लिखा है, देख तूने सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया कि उनका सत्यानाश ही कर दिया, फिर क्या तू बच जाएगा? गोजान और हरान और रेसेप में रहने वाले जिन जातियों को और तलसार में रहने वाले एदेनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनके देवताओं ने उन्हें बचा लिया? वह कहता है कि किसी भी देश के देवता में सामर्थ नहीं था कि अपने लोगों को अश्शूरों के हाथ से बचा लें। यशाया 37 उसके 13 में हम पढ़ते हैं, हमात का राजा, अर्पाद का राजा, सपोएम नगर का राजा और हेना और इवा के राजा, ये सब कहां गए? मेरे मित्रों, वह ऐतिहासिक तथ्यों का संदर्भ देता है जिनकी व्याख्या कठिन है। हम आगे देखते हैं हिजकिया की प्रार्थना। हिजकिया की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें, मुझे उसका यह काम बहुत ही अच्छा लगा। यशाया की पुस्तक 37 अध्याय के 14 पद में लिखा है, इस पत्री को हिजकिया ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब उसने यहवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहवा के सामने फैला दिया। पत्र पाते ही वह परमेश्वर के पास गया और पत्र उसके सामने खोलकर रख दिया और प्रार्थना की, जो धर्मशास्त्र की एक महान प्रार्थना है। आइए हम पढ़ें यशाया 37 उसके 15 और 16 पद में, और यहवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहवा, हे करूबों पर विराजमान इसराइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। कोई भी दीक्षित इसराइली यह नहीं मानता था कि परमेश्वर मंदिर में सीमित एक स्थानीय देवता है। यरूशलेम में रखा एक छोटा सा संदूक। सुलेमान ने प्रार्थना की थी, पहला राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय के 27 पद में, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? जी हाँ, प्रत्येक इसराइली जानता था कि वह स्वर्ग का परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है। हिजकिया परमेश्वर से विनती करता है कि वह प्रार्थना सुनकर अपनी प्रजा को अश्शूरों के हाथ से बचाए। यशाया 37 के 17 पद में लिखा है, हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आंख खोलकर देख और सन्हेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हिजकिया परमेश्वर को पत्र दिखाकर कहता है कि वह धमकी वास्तव में परमेश्वर को दी गई है। यशाया 37 के 18 और 19 पद में पढ़ते हैं, हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे केवल मनुष्यों की कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। हिजकिया उस पत्र की सच्चाई को स्वीकार करता है, उसे अस्वीकार करने और अनदेखा करने की गुंजाइश ही नहीं थी। परमेश्वर से व्यवहार करते समय उसे सच बताना आवश्यक है। जी हाँ, विशेष करके अपने बारे में कुछ भी छिपाना व्यर्थ है। यशाया 37 के 20 पद में हम पढ़ते हैं, अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। यशाया के माध्यम से परमेश्वर का उत्तर। परमेश्वर कहता है कि उसने अश्शूरों की निंदा सुनी है, देखिए परमेश्वर उनके साथ क्या करेगा। यशाया 37 अध्याय के 29 पद में, इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं, मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। परमेश्वर अब अपनी प्रजा को विश्वास दिलाता है और ढाड़स बंधाता है। यशाया की पुस्तक 37 अध्याय के 30 पद में वह कहता है, और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आपसे आप उगे, और दूसरे वर्ष वह जो उससे उत्पन्न हो, और तीसरे वर्ष बीज बोकर उसे लौने पाओगे और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। मुख्य विचार यह है कि यहूदा के वंशज अभी कुछ समय और स्वदेश वास करेंगे। इस भविष्यवाणी की निर्भीकता पर ध्यान दीजिए। यशाया की पुस्तक 37 अध्याय उसके 33 पद में लिखा हुआ है, इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। मेरे मित्रों, 185,000 सैनिकों में से एक भी अर्थात एक ने भी यदि गलती से तीर चला दिया होता जो यरूशलेम के शहरपनाह पार कर जाता तो परमेश्वर का वचन झूठा ठहरता। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कैसी अद्भुत है। आज इसे मुझे और आपको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। यशाया की पुस्तक 37 अध्याय के 34 पद में लिखा हुआ है, जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश करने ना पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। यह निश्चित भविष्यवाणी है जो ज्यों की त्यों पूरी हुई। आगे हम देखते हैं परमेश्वर अशुरों की सेना को नष्ट करता है। यशाया 37 के 36 पद में, तब यहोवा के दूत ने निकलकर अशुरियों की छावनी में 185,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। यरूशलेम के शहर पनाह पर नियुक्त सैनिकों ने सुबह एक विचित्र दृश्य देखा, भयानक बैरी जो अब लाशों के ढेर में है। यशाया की पुस्तक 37 अध्याय के 37 पद में लिखा है, तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। अब देखिए कि अश्शूरों के राजा के साथ क्या हुआ। यशाया 37 अध्याय के 38 पद में लिखा हुआ है, वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेख और शरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एस्रदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे प्रियो, लौकिक इतिहास भी यही कहता है कि सन्हेरीब के पुत्रों ने उसकी हत्या कर दी थी। यही वह समय था कि अशुरों के महान साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था और अंत में बेबीलोन द्वारा जीत लिया गया था। परमेश्वर ने तो पहले ही यशाया को बता दिया था कि वह परात नदी के तट पर एक राज्य को तैयार कर रहा है, और वही राज्य दक्षिणी राज्य यहूदा को बंधुआई में ले जाएगा। परमेश्वर जानता था कि उसने चमत्कारी रूप से हिजकिया के युग में अपनी प्रजा को बचाया था, परंतु शीघ्र ही एक दिन वह कहेगा, यशाया 1 अध्याय उसके 4 पद के अनुसार, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इसराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। यह समय भी आने वाला था। मित्रों, यहां पर अध्याय 37 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 38 में आते हैं, जिसका विषय है मृत्यु का समाचार सुनने पर हिजकिया की प्रार्थना। चंगाई की प्रतिज्ञा, धूप घड़ी का चमत्कार, हिजकिया की स्तुति का भजन, ये तीन चीजें हम देखते हैं। यह अध्याय राजा हिजकिय्याह के रोग, उसकी प्रार्थना और चंगाई का वर्णन करता है। यह जानना हमारे लिए उचित है कि जब अश्शूरों ने यरूशलेम को घेर लिया था, तब हिजकिय्याह के शरीर में एक फोड़ा था। उसकी रोग मुक्ति निश्चय ही अश्शूरों की सेना के विनाश के पूर्व की होगी। जिस समय वे घेराव में थे और यशायाह के द्वारा यरूशलेम की मुक्ति के शुभ संदेश अर्थात प्रार्थना के उत्तर से उसे प्रोत्साहन मिला था। हिजकिय्याह का राज्यकाल 29 वर्ष का था और इस घटना के बाद उसने 15 वर्ष राज किया। अतः उसके रोग का समय उसके राज का 14वां वर्ष था। लिखा है यशायाह की पुस्तक 36 अध्याय के 1 पद में कि सन्हेरीब हिजकिय्याह के राज्यकाल के 14वें वर्ष में आया था। यह सब घटनाएं 14वें वर्ष की ही थी। हिजकिय्याह को रोगी होना, अश्शूरों द्वारा यरूशलेम का घेराव, ये सब बातें हम पाते हैं। मृत्यु का समाचार सुन हिजकिय्याह की प्रार्थना को हम देखेंगे यशायाह के पुस्तक 38 अध्याय उसके 1 पद में। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। मेरे मित्रों, इस अध्याय का आरंभ बड़ा रोचक है। हमने देखा है कि उस समय से अभिप्राय है महाक्लेश का समय और प्रभु राज का समय, परंतु यहां वह कहता है उन दिनों में। यशायाह कौन से दिनों के संदर्भ में चर्चा करता है? उन दिनों में जब यशायाह और हिजकिय्याह थे। उन दिनों में हिजकिय्याह रोगी था और मरने पर था। उसकी देह में एक फोड़ा था जिसके कारण वह अत्यधिक पीड़ित था और मरने की दशा में था। इसके साथ ही वह अश्शूरों से आतंकित था। कुछ विचारकों के अनुसार यह फोड़ा या तो कैंसर था या कोढ़ था या इन्हीं रोगों में से संबंधित कोई रोग था। जो भी था वह घातक था और उसके अंत का समय निकट था। मेरे मित्रों, यशायाह ने उसके मृत्यु का समाचार सुना दिया था। यह सच है कि मृत्यु हम सबका भाग है। हम उसका दिन और घंटा नहीं जानते हैं, परंतु यह तो हम निश्चय ही जानते हैं कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसे हम इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 27 पद में पढ़ते हैं। यह एक ईश्वरीय समय है। यदि हम अपनी अपनी मृत्यु का समय जान ले तो हमारा जीवन बदल जाएगा। मेरे मित्रों, कुछ वर्ष पूर्व मुझे एक अति उत्तम युवा प्रचारक का पत्र प्राप्त हुआ। उसके डॉक्टर ने उसे स्पष्ट कह दिया था कि उसे कैंसर है और उसके पास समय कम है। उसने अपने मित्रों को पत्र लिखा। मैं सौभाग्य से उस सूची में था। मैं उसका एक अंश आपको पढ़कर सुनाता हूं कि आपको मृत्यु के साय में रहने वाले की मानसिकता का बोध हो। वह सांसारिक वस्तुओं का उचित मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। कहता है, मेरी मछली पकड़ने की बंसी, पुस्तकें और बगीचे अब उतने मूल्यवान नहीं रहे जितने एक सप्ताह पूर्व थे। और कुछ समय के पश्चात यह युवा प्रचारक मर गया। मेरे मित्रों, बहुत सारे लोग हैं इस परिस्थिति से होकर के जाते हैं। अलग अलग उनके अनुभव होते हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के जीवन केवल कुछ ही समय के होते हैं। मैं उस युवा प्रचारक की बातों की गवाही को दे सकता हूं। बड़े आश्चर्य की बात है कि अकस्मात ही कुछ वस्तुओं का मेरे जीवन में महत्व ही नहीं रह जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर रहा है उसके लिए इस संसार में कोई भी चीज महत्व नहीं रखता है। मैं समझ गया था कि मैं उसमें कुछ महीने भी नहीं रह पाऊंगा। अर्थात आप हो या मैं, यदि हम अपने मृत्यु को जान ले तो हम समझ जाएंगे कि हम उस घर में जिसे हमने बनाया है, सारी लागत के साथ बनाया है, हम अधिक दिनों तक नहीं रह पाएंगे। और यह अति महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जाने। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास मेरे लिए और आपके लिए कोई दूसरी योजना है जिसे वही जानता है, मैं और आप नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि मृत्यु का समाचार सुनकर हिजकिय्याह ने क्या किया। यशाया की पुस्तक 38 अध्याय के 2 पद में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हमने हिजकिय्याह को पहले भी प्रार्थना करते देखा है जब उसने परमेश्वर को सन्हेरीब का पत्र पढ़कर सुनाया था। अब हम यशाया 38 के 3 पद में देखते हैं, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह विलख विलख कर रोने लगा। यह एक ऐसा समय होता है जब मनुष्य रो सकता है। मुझे भी अपने मृत्यु का समाचार सुन करके रोना आता है और निश्चय ही वह प्रचारक भी रोया था। ऐसे समय पर रोना निश्चित है, परंतु हिजकिय्याह ने जीवन के लिए प्रार्थना भी की। परमेश्वर की दृष्टि में उसका मान था और व्यवस्था के अनुसार उसने जो किया वह उचित था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 5 पद में हिजकिय्याह के बारे में वह कहता है, वह इसराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह एक असाधारण मनुष्य था। वह यह कहकर घमंड का प्रदर्शन नहीं कर रहा था। हम देखेंगे चंगाई की प्रतीक्षा, धूप घड़ी का चमत्कार। यशाया की पुस्तक 38 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन यशाया के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसे 15 वर्ष का जीवन दान दिया। उसने हिजकिय्याह के निमित्त नहीं, दाऊद के निमित्त यह किया था। परंतु हमारी प्रार्थनाएं दाऊद के निमित्त नहीं, उसके महामहिम पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनी जाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 23 और 24 पद में प्रभु यीशु ने कहा, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम प्रभु यीशु के नाम में स्वर्गीय पिता से विनती कर सकते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करने का अर्थ है आप मसीह में हैं और आप उसकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसका अर्थ है उसे प्रसन्न करना। कभी वह चंगाई देता है और कभी नहीं देता है, निर्णय तो उसी के हाथ में है। मेरे मित्रों, क्या ही सौभाग्य की बात है कि हम अपने आप को प्रभु के सामने ला सकते हैं और जरूरतों को उसके सामने रख सकते हैं। यशाया 38 के 6 पद में लिखा है, अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। परमेश्वर यरूशलेम की मुक्ति को हिजकिय्याह की मुक्ति से जोड़ता है। उसने उसे रोग मुक्त कर जीवन दिया। एक प्रार्थना का परमेश्वर से उत्तर पाने पर विश्वासी को विश्वास हो जाता है कि वह अन्य प्रार्थनाएं भी सुनेगा। जी हाँ, मैं आपसे सच कहता हूँ कि मैं अपने रेडियो श्रोताओं की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर से पाकर अपने विश्वास में सामर्थी हुआ हूँ। उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के लिए सदा प्रार्थना की है, क्योंकि वह आज भी आपकी प्रार्थना और मेरी प्रार्थना को सुनता है। यशाया 38 उसके 7 और 8 पद में लिखा हुआ है, यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने उसे चिन्ह दिया जो उसके उत्तर का आश्वासन था। डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं, हम अपनी कल्पना में हिजकिय्याह के राजमहल में प्रवेश करें और उसके कक्ष में पहुंचें। वहां राजा लेटा है, अपनी सया पर शांत पड़ा है, परंतु उसका चेहरा अब दीवार की ओर नहीं है। उसकी आंखों में आनंद और आशा की चमक है। जब वह अपनी खिड़की से बाहर वाटिका में देखता है तो वहां एक स्तंभ पर अंश अंकित है जिनमें से 10 पर छाया गिर रही है क्योंकि सूर्य ढल चुका है, परंतु दोबारा देखने पर वे ही अंश जिन पर छाया थी फिर से धूप में आ गए हैं। यही वह चिन्ह है जिसके लिए राजा ने निवेदन किया था। मेरे प्रिय मित्रों, यह क्या ही अद्भुत चिन्ह है कि धूप फिर से 10 अंश वापस आ गया। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। यदि आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आप परमेश्वर के सामने लाएंगे तो निश्चय ही परमेश्वर आपकी भी सहायता करेंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं और हो सकता है कि कुछ ऐसे पाप है जिसका आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन में छुटकारा पाना चाहते हैं। प्रभु यीशु के पास आएं, कहें, प्रभु मैं भी इस प्रकार के चिन्ह अपने जीवन में देखना चाहता हूं, आप मेरी मदद करें। मेरे मित्रों, जब आप विश्वास योग्यता के साथ उसके पास आएंगे, अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, जिस प्रकार से हिजकिय्याह ने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर कहा, उसकी आयु बढ़ा दी गई, उसकी बीमारी से उसको छुटकारा मिला और उसको चिन्ह भी दिया गया, वह आपके जीवन में भी वह कर सकता है। क्यों ना आज हम इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को रखते हुए उसकी निकटता में आएं और कहें, प्रभु आप मेरे साथ हो, आप मेरी सहायता करें। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने आत्मिक जीवन में लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न